फरीद खान ने कहा, तुम्हारे लिए ड्राइवर का इंतजाम करना होगा। ड्राइवर? नूर ने हल्की हैरानी से उनकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि बात उसी से की जा रही है। हाँ, फरीद खान ने सहज लहजे में कहा, यूनिवर्सिटी जाना है, आना जाना होगा, पिक एंड ड्रॉप का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, और हाँ, तुम्हें बुक्स भी चाहिए होंगी। इतना कहकर उन्होंने अपने बेटे रेहान की तरफ देखा। रेहान, इसकी बुक्स मंगवा देना। रेहान ने सिर हिलाया, ठीक है। नूर ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इंतज़ाम कर लूँगी। उसका जवाब इतना सीधा था कि कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रेहान ने उसकी तरफ देखा, वो ना तो उसकी तरफ देख रही थी, ना ही किसी को समझाने की कोशिश कर रही थी, बस जैसे फ़ैसला पहले ही कर चुकी हो। तुम खुद कैसे इंतज़ाम करोगी? रेहाना बेगम ने हल्के आश्चर्य से पूछा। नूर ने कुछ नहीं कहा। अभी नूर को यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, इसीलिए वो घर पर ही थी। डाइनिंग एरिया और हॉल के बीच एक खुली सी जगह थी, एक दीवार पूरी मिरर की, सामने टीवी और आरामदायक बैठने की जगह। नूर वहीं बैठी थी, रिमोट से चैनल बदलती हुई, पर उसका ध्यान टीवी पर नहीं था। रेहान हॉल से बाहर जाने ही वाला था कि उसकी नज़र नूर पर पड़ी। वो रुक गया, फिर वापस उसकी तरफ आया। सुनो, उसने कहा। नूर ने चैनल बदलना बंद किया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं, ठहराव था। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? रेहान ने सीधे पूछा। जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, उसे तो तुम काफ़ी पिला रही हो और मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि आपने मुझसे सॉरी नहीं बोला, नूर ने शांति से जवाब दिया। रेहान को समझ ही नहीं आया कि वो क्या सुन रहा है। मैं किस बात के लिए सॉरी मांगू? उसकी आवाज़ में हैरानी साफ थी। मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। इतने में अरमान भी आ गया। उसे और रेहान को साथ ऑफिस जाना था, इसीलिए वो पीछे पीछे हॉल तक आ पहुंचा। नूर ने नज़र उठाई और बोली, वही तो, आप अपने मेहमानों में इतने बिजी थे कि आपने मेरे अब्बा को सलाम तक नहीं किया। रेहान जैसे कुछ कहना चाहता था, पर नूर ने बात आगे बढ़ा दी। और पहले दिन की बात याद है, जब अरमान से मिलने लड़की वाले आए थे? तो तुम इसलिए नाराज़ हो? रेहान की आवाज़ अब थोड़ी कड़ी हो गई। इसलिए तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो? नहीं, नूर ने साफ कहा, आपने ऐसा दिखाया जैसे हम वहां थे ही नहीं, जैसे हम आपके लिए मायने ही नहीं रखते। नूर ने बिना झिझक कहा, जैसे हम आपके लिए नहीं थे, अब आप हमारे लिए नहीं हैं। इतने में रेहान की एक फ़ाइल कमरे में रह गई थी, उसे लेने सादिया भी पीछे आ गई। वो वहीं रुक गई जब उसने देखा कि रेहान और नूर के बीच बहस हो रही थी। तो कब तक तुम मुझे ऐसे ही नज़रअंदाज करोगी? रेहान ने पूछा। जब तक आप सॉरी नहीं कह देते, नूर ने बेहद सादगी से जवाब दिया। रेहान तो हैरान हुआ ही, अरमान और सादिया उससे भी ज़्यादा। मैं तुम्हें सॉरी कहूँ? रेहान ने लगभग हंसते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मरकर भी तुम्हें सॉरी नहीं कहूँगा। तो मर जाइए, नूर ने उतनी ही लापरवाही से कहा। इस बार रेहान को गुस्सा नहीं आया, वो चौंक गया, लेकिन सादिया का सब्र टूट गया। तुम्हें ज़रा भी अक्ल है? वो गुस्से से बोली, मेरे शौहर के लिए ऐसा बोलती हो? सही तो कह रही हूँ, नूर ने ठंडे लहजे में कहा, अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं हूँ तो वो मेरे लिए भी कुछ नहीं है, बात खत्म। सादिया बेहद गुस्से में थी, वो फाइल रेहान के हाथ में थमाकर वहां से चली गई। ये लड़की बिल्कुल पागल है, वो बुदबुदाई। नूर भी वहां से जा चुकी थी। आपको अब पता चला? अरमान हंसते हुए बोला, मैं तो पहले से जानता था, इसकी आदत डाल लीजिए, उसने सादिया को समझाते हुए कहा। सादिया वहां से चली गई, एक बेवकूफ की जिम्मेदारी उठा ली है, अरमान ने रेहान से कहा। रेहान ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, वो बेवकूफ नहीं है, सादिया से ज्यादा समझदार है। अरमान उसकी तरफ देखता रह गया। वो लोगों की नज़रें पढ़ना जानता है, रेहान ने कहा, और दूसरों की नज़रों में अपनी हैसियत को बहुत अच्छे से पहचानती है। इसका क्या मतलब है रेहान भाई? अरमान ने पूछा। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे, और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। लॉन में हलचल थी, फैजान सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था। घर के नौकर अलग अलग कामों में लगे थे, कोई लाइट्स ठीक कर रहा था, कोई फूलों की सजावट। फैजान हर चीज पर नजर रखे हुए था, कहीं रुककर निर्देश देता, कहीं खुद हाथ बटा देता। उसी वक्त नूर रेहाना बेगम के साथ लॉन में आई। जैसे ही रेहाना बेगम की नज़र सजावट पर पड़ी, उनका चेहरा खिल उठा। फूलों के रंग, लाइट्स की सॉफ्ट रोशनी और पूरा अरेंजमेंट, सब कुछ बहुत सलीके से किया गया था। फैजान, रेहाना बेगम ने तारीफ भरे लहजे में कहा, तुम तो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी ही खोल सकते हो, तुम्हारी आर्टिस्ट चॉइस बहुत अच्छी है। फैजान हल्के से मुस्कुराया, उस मुस्कुराहट में न दिखावा था न घमंड, बस इत्मीनान। तभी साइड वाले लॉन से अपने घर की तरफ से माहिरा अंदर आई, उसकी नज़र सीधा फैजान पर पड़ी। कंपनी खोलने की क्या ज़रूरत है? माहिरा ने तंज कसते हुए कहा, किसी फूलों की दुकान में काम मिल जाएगा, इसे लेबर वर्क कर सकता है, उसी के लिए ही तो बना है। उसकी बात एक कटाक्ष की तरह फैजान पर आकर गिरी। फैजान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहा, जैसे ऐसी बातों का वो आदी हो। रेहाना बेगम भी एक पल को चुप हो गई, लेकिन नूर को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। घर के किसी नौकर के लिए माहिरा का ये लहजा उसे चुप गया। नूर अब तक यही समझती थी कि फैजान घर का नौकर है, माहिरा का क्या रिश्ता है ये उसे नहीं पता था। उसने फैजान को हमेशा दोनों घरों के छोटे मोटे काम करते हुए ही देखा था, पर फिर भी इस तरह बात करना उसे गलत लगा। अब सारी बातें यहीं करोगी क्या? रेहाना बेगम ने माहौल संभालते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं। आप चलिए, माहिरा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। मैं अभी आती हूँ। नूर रेहाना बेगम के साथ अंदर चली गई। फैजान वापस अपने काम पर लगने लगा था कि माहिरा ने उसे रोक लिया। मेरी बात सुनो। फैजान रुक गया। जी, कल को तुम ही गए थे ना नूर को लेने? माहिरा ने सीधे सवाल किया। मैं, फैजान ने शांत स्वर में कहा, मैं ही आया था। उनका घर कहाँ है? कहाँ रहते हैं उनके रिश्तेदार? माहिरा ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता, फैजान ने कहा। माहिरा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, पता नहीं तुम लेकर आए हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं? फैजान ने नजर झुका ली। मैं उन्हें अस्पताल से लेकर आया था, फैजान ने कहकर बात खत्म की। ठीक है, इतना कहकर वो पलटी और रेहाना बेगम के घर के अंदर चली गई। फैजान वहीं कुछ पल खड़ा रहा, फिर चुपचाप काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नूर धीमे कदमों से सादिया के कमरे के सामने आकर रुकी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से हल्की सी खुशबू आ रही थी, नेल पॉलिश और परफ्यूम की मिली जुली। नूर ने हल्के से दस्तक दी। भाभी, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से कहा, भाभी, ताई अम्मी के रूप में माहिर आई हुई हैं, आपको नीचे बुला रही हैं। कमरे के अंदर सादिया आईने के सामने खड़ी थी, उसके हाथ में नेल पॉलिश की बोतल थी। ब्रश को हवा में रोककर वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर रही। नूर को लगा शायद उसने सुना नहीं। भाभी, नूर ने फिर से आवाज दी, लेकिन सादिया अब भी कुछ नहीं बोली। उसके दिमाग में वही बात गूंज रही थी, तो मर जाइए। नूर की आवाज नहीं, उसके शब्द, रेहान के लिए कहे गए शब्द सादिया के होंठ भींच गए। उसे जैसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। नूर को लगा शायद उन्हें सच में सुनाई नहीं दिया। वो एक कदम आगे बढ़ी। भाभी, ताई अम्मी। अचानक सादिया घूमी, उसकी आंखों में गुस्सा था, पर आवाज जबरदस्ती शांत रखी गई। रुको, नूर चुप हो गई। सादिया ने जानबूझकर ब्रश को नाखून पर जोर से फेरा, नेल पॉलिश फैल गई। देखा, उसने नूर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरी नेल पॉलिश खराब कर दी। नूर हड़बड़ा गई। मैंने कुछ नहीं, बस। सादिया की आवाज तेज हो गई, हर जगह घुसना जरूरी है क्या? नूर सन रह गई, उसने ऐसा रिएक्शन उम्मीद नहीं किया था। भाभी, मैं तो सिर्फ, सादिया ने उसके कंधे पर अचानक हाथ रख दिया, उंगलियों का दबाव सामान्य नहीं था। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है?
उसकी आवाज में जहर था।